मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते मयि अर्हन्तादि जो इत्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम नए कर्म करते हैं और नए कर्म संचित भी करते हैं और अपने पुराने कर्मों का स्वाद भी लेते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में बाह्य निमित्त बहुत से बनते हैं। हमारे अपने अंतरंग का जो मोह है वो भी इसमें कारण बनता है, पर मुख्यतः हमारे वर्तमान पुरुषार्थ की हीनता वह भी एक कारण बनती है। इसलिए हम अपने वर्तमान पुरुषार्थ को संभालने का विचार निरंतर बनाए रखें, इसलिए हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे हम अपने वर्तमान के पुरुषार्थ को संभाल करके इन कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में किसी को ज्ञान कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है, तो किसी ने दिया नहीं है, वो हमारे ही अपने कर्मों के क्षयोपशम से हमें प्राप्त हुआ है, और यदि प्राप्त नहीं हुआ है तो हमारे ही किसी कर्म के उदय से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्ति होती है क्षय और क्षयोपशम से, और जो प्राप्त नहीं है वो हमारे अपने कर्म के उदय से हमें प्राप्त नहीं होता, या कि कर्म के उदय से हमें उसको प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। कर्म का उदय हमें इस संसार में कुछ दिलाता नहीं है। कर्म का उदय तो सिर्फ निमित्त बनता है, हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसका लाभ लेना चाहें तो लाभ ले लेते हैं, और उस अवसर को चूक जाएं तो चूक भी सकते हैं। इसलिए हर बात में यह कह करके पल्ला झाड़ लेना कि क्या करें कर्म का उदय है, यह बात एक हद तक ही ठीक है। सर्वथा यही हर एक स्थिति में लागू हो ऐसा नहीं है। हमारे पास अगर ज्ञान की कमी है तो माना हमने कि हमारे पूर्व संचित ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक कि हमारे अंदर पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ तब तक ही रहेगा। जब तक हमारे भीतर समीचीन श्रद्धा जागृत नहीं हुई है तब तक यह ज्ञान अज्ञान की कोटि में आता रहेगा। और एक बार अगर हम अपने पुरुषार्थ से सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर लें, सात तत्वों का समीचीन श्रद्धान हमें हो जाए, आपा पर का भेद विज्ञान हो जाए, हम अपने पुरुषार्थ से अपने ही मिथ्यात्व को तोड़ करके मिथ्या सम्यक मिथ्यात् और सम्यक इन तीन टुकड़ों में तोड़ करके उपशमित कर दें, तो देखिएगा हमारे पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। और हम विचार करें कि हम कम से कम वर्तमान में तो और अधिक ज्ञान को आवृत करने वाले कार्य न करें, ऐसे भाव न करें जिससे कि हमारा अज्ञान और बढ़ता चला जाए, हम दूसरे के अच्छे ज्ञान को देख करके अप्रसन्नता व्यक्त न करें बल्कि प्रसन्न हो। होता यह है कि कोई अगर दो बातें ज्ञान की कहता है तो हम उसे सहसा स्वीकार नहीं कर पाते, मन ही मन उसके ज्ञान की कहना चाहिए प्रकट में तो नहीं करते पर मन ही मन उसका असम्मान या कि अनादर कर बैठते हैं। ये हमारे अपने ज्ञान को ढकने का पहला कारण है। हमें जहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस शास्त्र से हुई, जिन श्री गुरुओं के चरणों में बैठने से हुई, उनका हम सदा स्मरण रखें। अगर हम उन्हें भुला देते हैं तो मानिएगा कि हम अपने ही ज्ञान को आवृत करने का उपाय कर रहे हैं। जो ज्ञान दूसरे को देने योग्य है उसे ईर्ष्यावश दूसरे को नहीं देना। पूछने पर कि क्या ये आप जानते हैं, नहीं जानता हूं ऐसा कह देना। क्या ये शास्त्र आपके पास है, मुझे आप पढ़ने दे सकते हैं, मेरे पास है ही नहीं, ऐसा कह देना, यह अपने ही ज्ञान को आवृत करने का कारण। इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि मैं इसे चार बातें ज्ञान की बता दूंगा तो मेरे से ज्यादा विद्वान हो जाए, मेरे से ज्यादा ज्ञानवान हो जाए। भैया किसी के देने से ज्ञान किसी का नहीं बढ़ता, ये तो सिर्फ निमित्त कारण है कि किसी गुरु के मुख से हमने सुना, किसी शास्त्र के माध्यम से हमने बांचा पढ़ा, लेकिन जेता शयोप सम हमारा होगा उतना ही ज्ञान हमारे भीतर प्रकट होगा। ये वाही आलंबन है उस ज्ञान के प्रगटीकरण के। हमें इनको देने में कोताही नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन होता है ऐसा। हम यहां तक कि दूसरे के ज्ञान में बाधा डाल देते, अंतराय उपस्थित कर देते, वो ना पढ़ सके ऐसा उसे काम में लगाए रखते हैं जिसे कि अध्ययन चिंतन मनन का समय ही ना मिले। स्वयं के लिए भी इतने दूसरे कामों में लगाए रखना अपने आप को और दूसरे को संसार के प्रपंच में कि अपने ही आत्म कल्याण की बात सीखने के लिए दो क्षण ना मिले, ये क्या चीज है? ये अंतराय है, ये बाधा उत्पन्न की। अपन ने अपने क्षयोपम हमें प्राप्त हुआ था तो उससे हमने संसार की सब बातें जान ली, अपने आत्म कल्याण की बात जानने का हमने प्रयास नहीं किया तो आगे फिर हमें ये क्षयोपम नहीं मिलेगा। इतना क्षयोपम तो सब जीवों के है कि प्रयोजन भूत सात तत्वों का ज्ञान कर लेवे लेकिन वही कर सकेगा जिसने अपने पुरुषार्थ को जागृत कर लिया है। सब जीव इतना शयोपशम लेके पैदा होते हैं कि प्रयोजनभूत सात तत्व का ज्ञान कर सकें, लेकिन विरला ही कोई प्रयोजनभूत सात तत्वों का ज्ञान कर पाता है। और इसी वजह से आगे फिर अज्ञानता बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि जो जानने योग्य था वो नहीं जाना, और जो जानने योग्य नहीं था वो ढेर सारा जाना। अब नहीं मिलेगा जानने योग्य के लिए योग्य भी ज्ञान नहीं मिलेगा। ये अपने हाथ से इंतजाम करते हैं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। साधनोपघाता, ज्ञान के जो साधन हैं उनको नष्ट कर दे। किसी गुरु से किसी को ज्ञान मिलता हो तो उस गुरु के बारे में चार बातें उससे खोटी कह करके उसे वहां से विमुख कर देना, ताकि उसके ज्ञान में बाधा आ जाए। जिस शास्त्र से वो ज्ञान हासिल कर रहा था उस शास्त्र के बारे में कह करके उसे वहां से क्या कहते अपन विचलित कर देना, भुड़का दो कम दो। और इतना ही नहीं, किसी के ज्ञान की बात कहने पर कह देना ऐसा नहीं है, जानते हुए कि ऐसा ही है यह कह देना कि ऐसा नहीं है, आपने समीचीन सम्यक ज्ञान का घात ही कर दिया। अब आपको वह सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये सब हमारे ही अपने परिणाम है भैया, हमारी ही अपनी कमी है ये, जिससे कि हमें फिर अज्ञानता का सामना करना पड़ता है। चाहते हुए भी हम अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आत्मज्ञान क्या, बाह्य लौकिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पाता इस ज्ञानावरण कर्म के उदय में। इसलिए हम ध्यान रखें कि हमारे अपने वर्तमान में भाव संभाल करके रखें, तो ही हम इन कर्म के उदय से बच सकते हैं, इसे जीत सकते हैं। हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनका क्या कारण है? सबके जीवन में सुख दुख है, सुबह से शाम तक और पूरे जीवन उसी में व्यतीत हम करते हैं। और हम देखते हैं कि जब जब भी कोई पूछता है कि सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, तो हमारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पर चला जाता है, बाह्य निमित्तों पर चला जाता है कि इसकी वजह से दुख है और इसकी वजह से सुख है। तो भैया जरा सा विचार कर ले मैं इस बात पर बैठ करके, जिनके जीवन में अभाव है चीजों का वे दुखी हैं। तो चीजों का अभाव दुख का कारण अगर है, तो जिनके पास चीजें बहुत हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, उनके दुखी होने का कारण क्या है? दुखी तो वे भी। अगर किसी के पद प्रतिष्ठा नहीं मिलने से दुख है, तो भैया जिन्हें पद प्रतिष्ठा मिली है उनको तो सुखी होना चाहिए, लेकिन वे भी दुखी। जिनके शरीर में व्याधि है वे दुखी हैं, तो जिनके शरीर स्वस्थ हैं उन्हें तो सुखी होना चाहिए, लेकिन वे भी दुखी। तो इसके मायने क्या हुआ? इसके मायने ये हुआ कि ये सब चीजें तो हमारे सुख दुख में बाह्य निमित्त हैं, अंतरंग में जैसे मेरे कर्म का उदय है वैसी मुझे सुख दुख की वेदना या अनुभूति हो। असाता वेदनी और मोहनी कर्म, इन दोनों के उदय में ही बाह्य वस्तुएं हमारे सुख दुख में निमित्त बनती हैं। और लगता हमें ये है कि ये हमारे सुख में ये हमारे दुख में कारण है। सुख और दुख का कारण तो अपने भीतर लिए घूमते फिरते हैं हम, किसी को क्या हम अपने दुख के लिए दोषी ठहराएं? ये विचार हमारे मन में आना चाहिए। होता यह है कि दूसरे को हम अपने दुख का कारण मान करके और अधिक दुख का उपाय करते रहते हैं, ये कभी ध्यान ही नहीं।
दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद वे। उमा स्वामी आचार्य महाराज के चरणों में बैठने पर वे हमें सलाह दे रहे हैं कि भाई इस चीज से बचो, इन बाह्य कारणों में जो तुम अपना दुख ढूंढ रहे हो कि इनमें से मुझे दुख मिलता है, इस भ्रम को दूर करो। दुख किसे कहते हैं? इष्ट के वियोग होने पर, अनिष्ट के संयोग होने पर जो मन के भीतर पीड़ा उत्पन्न होती है वो दुख कहलाता है। तो ये इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग बाह्य कारण है, लेकिन इष्ट और अनिष्ट की जो कल्पना है वो मेरे मोह जनित है, और साथ में असाता वेदनी का उदय मेरे दुख का कारण है। लेकिन लगता यह है कि इष्ट का संयोग हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा और अनिष्ट का वियोग हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये मिथ्या भ्रांति मेरी जाति नहीं है और मैं अपने दुख का और इंतजाम कर लेता और मिथ्या उपाय करता हूं सुख के जुटाने से। दुख से बाह्य कारणों से बच जाने से कोई दुख से बच जाए, या कि बाह्य में सुख के सारे सामग्री संयोजित कर लेने पर कोई सुखी हो जाए, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। अंतरंग के कारण पर ध्यान नहीं जाने की वजह से हम इसी में उलझे रह गए। जो हितकारी है उसके अपने से दुख,
पर जो मन में विकलता आती है उसे शोक कहते हैं। लेकिन वो हितकारी क्यों जान पड़ रहा था? निज को पर को करता पिछान, निज को पर के सुख का कारण और पर को अपने सुख का कारण मानने का यह जो भ्रम है, ये मेरे हितैषी के अभाव में मेरे भीतर शोक उत्पन्न करने में कारण बनता है। लगता तो यह है कि मेरा जो हितैषी है वो मेरे से विलग हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैंने अपने भ्रम से उसे अपना हितैषी माना था। मेरा हितैषी तो मेरे अपने परिणामों की निर्मलता है, मेरी कषायें मेरी शत्रु हैं, बाहर में मेरा कोई शत्रु नहीं है, ना बाहर में मेरा कोई मित्र है। ये विचार हमारे भीतर जब आएगा तब जाकर के इस दुख से हम बच पाएंगे, वरना तो दुख का रोज इंतजाम कर रहे हैं अपन और अधिक दुखी होकर के। किसी के द्वारा कहे गए मर्म भेदी कठोर वचन को, निष्ठुर वचन को सुन करके जो मन ही मन संताप होता है उसे ताप कहते हैं। लेकिन भैया वे जो कठोर वचन हैं वे तो उसने कहे हैं, लेकिन हमने उन्हें कठोर क्यों मान लिया है? होली के दिन तो कोई कैसे भी अपशब्द कहता है, मैं बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि उन शब्दों को मैं महत्व ही नहीं देता हूं, और आज मैंने उन शब्दों को महत्व देकर के अपने दुख का उपाय खुद उत्पन्न कर लिया। उन शब्दों में कहां सामर्थ्य कि वो मुझे दुखी कर सके। लेकिन लगता तो यही है कि इन्होंने ऐसे कठोर वचन नहीं की कहे होते तो मुझे दुख नहीं होता। नहीं भैया, सो तो माँ भी जो है कभी कभी कान पकड़ के तमाचा दिखाती है और कठोर वचन बोलती है जब बेटा नहीं मानता है तब, पर बेटा भीतर ही भीतर जानता है कि इस कठोरता के पीछे भी प्रेम छिपा हुआ है, तो बुरा नहीं मानता। और यदि बुरा हमें लग रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे ही किसी कर्म का उदय तो है, या कि सिर्फ कर्म का उदय ही नहीं, मेरे अपने वर्तमान पुरुषार्थ की दिशा मैंने ठीक नहीं रखी है, ये भी तो कारण है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वियोग होता है तब हम उसके गुणगान करते हुए जोर जोर से जो रोते हैं उसे कहते आक्रंदन। ये पजों का कहना कहलाता। बैठ भी गए थे उनके, मर गए भी उनके घरे को, बैठ भी गए थे। बैठने तो गए थे आप, जिंदगी भर उसके गुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आज उसके रो रो करके गुणगान करने गए हो आप। अपनी असाता का इंतजाम और दूसरे को भी असाता में डालने का इंतजाम करने गए हो आप। आप दूसरे की साता पहुंचाने नहीं गए हो, ना दूसरे की असाता कम करने, ना कोई कर सकता है। ये दोनों पर घटित करना आत्म परोभ है। अपने और दूसरे के लिए स्वयं को भी दुखी रखना, स्वयं को भी शोकग्रस्त रखना, स्वयं भी संताप में रहना, स्वयं भी आक्रंदन करना और दूसरे को भी ऐसा ही करवाना, ये सब अपने ही दुख का इंतजाम। दूसरे को रुलाना और स्वयं भी संक्लिशित होकर के रोना, ये अपने दुख के कारण। हम कभी विचार करें कि क्यों हम यहां इस संसार में दुखी हैं, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये मेरे अपने पुरुषार्थ की कमी होने से हम यहां पर दुखी हैं। परिदेवन, किसी के द्वारा दोष लगाए जाने पर जो मन के भीतर बहुत बेचैनी होती है, और फिर हम ऐसा रुदन करते हैं जिससे दूसरे के अंदर भी करुणा भाव उत्पन्न हो जाता है, तब वो परिदेवन कहलाता है। यह भी असाता का ही कारण है। इन सब कारणों को हम विचार करें और वर्तमान में अपने पुरुषार्थ को ठीक दिशा दें, ताकि दूसरे के और स्वयं के दुख में हम कारण न बने। केश लोंचन करना, उपवास करना, यह भी थोड़ा सा दुख देने वाला कारी मालूम पड़ता है। सो ध्यान दें रखना, इससे असाता का बंद नहीं होता, क्योंकि केश लोंचन करना और उपवास करना यह राग द्वेष से प्रेरित क्रिया नहीं है, इसमें वीतराग भाव है। और जहां राग द्वेष से प्रेरित होकर के हम दुख दूसरे को उत्पन्न करते हैं या स्वयं दुखी होते हैं, वो हमारे असाता के बंध का कारण है, ये स्पष्ट ध्यान रख रहे। सो तो डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तब पीड़ा होती है, दवाई लगाता है तब पीड़ा होती है, लेकिन वहां उसके पीछे भाव पीड़ा देने का नहीं है, वहां भाव पीड़ा दूर करने का है, इसलिए उसको भी असाता का बंध नहीं होता। सो तो जब बेटी की विदा करते हैं तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन मन ही मन ऐसा सुख मिलता है कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया और बेटी सुखी रहेगी। सो तो बेटे को जब अपने से दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आंसू आ जाते हैं विदा करते समय, लेकिन पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा, भविष्य उज्जवल हो जाएगा, सो भेज भी देते हैं, सुखी भी। जितना राग द्वेष है उतना ही साता असाता का बंद होगा, ये ध्यान रखें हम, क्योंकि दोनों ही वेदनी कर्म बल पाता है मोहनी के द्वारा। अकेला वेदनी कर्म उसका तो उदय केवली भगवान के भी होता है, लेकिन वो वहां उन्हें साता असाता उत्पन्न नहीं कर सकता मोह के अभाव। इसलिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के बाद मोहनी न रखकर वेदनी रखा और बाद में मोहनी कर्म को रखा, क्योंकि वेदनी को बल मिलता है मोहनी कर्म के द्वारा। इसलिए जितना हमारा मोह है, ये सारी क्रियाएं जो हम मोह से ग्रसित होकर के करते हैं, वे हमारे दुख में असाता में कारण बनती हैं। ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन कारणों के अलावा भी अकलंक स्वामी तत्वार्थ राजवार्तिक में कहते हैं कि मारण तारण उच्चाटन तर्जन, ये सब करना भी अपने ही असाता का इंतजाम करना है। स्वयं के लिए दुखी बनाना हो तो दूसरे को दुख में डालने का उपाय करो।
क्या?
हाँ, सीधा सीधा कह रहे हैं वो, हमने ऐसा कह दिया। आप अगर अपने दुख का इंतजाम आपको करने का शौक है तो दूसरे के दुखी होने पर अच्छा महसूस करने वाले लोग भी अपने दुख का इंतजाम कर लेते हैं। और एक जगह लिखा उन्होंने आचार्य महाराज ने कि अपने जीवन को लापरवाही से व्यतीत करना व्यर्थ ही व्यतीत कर देना, यह भी असाता का कारण है। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, जीवन की सार्थकता एक क्षण भी नहीं महसूस की और पूरा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया, हाथ में क्या आया? कुछ नहीं, मृत्यु के समय पीड़ा ही हाथ में आई और चले गए। ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे जीवन की सार्थकता क्या थी। मेरे जीवन की सार्थकता तो रत्नत्रय को प्राप्त करने की थी। मैंने रत्नत्रय की आराधना नहीं की तो मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया। ये मेरे असाता का इंतजाम मैंने खुद कर दिया, किसी और को दोषी नहीं दे सकता। इसलिए लिखा उन्होंने कि अपने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देना, यह भी असाता का कारण। और इतना ही नहीं, हिंसा जनक चीजों का उत्पादन करने में रुचि लेना, विष का उत्पादन करना, कीटनाशक चीजों का उत्पादन करना, विस्फोटक वस्तुओं का उत्पादन करना, आतिशबाजी, ये जितना उत्पादन करने वाले हैं सब अपने लिए असाता के बंध का कारण बना रहे हैं स्वयं। और हम उन सब का समर्थन करने वाले भी उसका 1/6 हम भी पाएंगे। जो जो समर्थन करेंगे वो पाएंगे। जो जो चलते हुए आतिशबाजी देख करके खुश होंगे वे भी उतना ही फल पाएंगे जितना चलाने वाला पा रहा। और जितना बनाने वाले ने अपराध किया है, जितना अपने दुख का इंतजाम किया, हम भी उसका इंतजाम करेंगे। ये कर्म सिद्धांत है, कर्णानि योग है, राई रत्ती का काम यहां चलता है। यहां कोई हो, राजा हो चाहे रंक हो, किसी को कोई माफी नहीं मिलती। यहां पर मर्सी अपील नहीं लगा सकते यहां पर कि आग में हाथ डाल करके राष्ट्रपति को मर्सी अपील लगाएं कि साहब क्षमा करना, गलती से डाल दिया हाथ। ठीक है, गलती से डाल दिया तो निकाल लो, लेकिन जला हुआ निकलेगा। हाँ, आपने डाला था, आप कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कर्णानि योग के लिए, कर्म सिद्धांत के लिए तो बहुत सावधानी से, अरे अब हमेशा से चलो आ रहा हो, अब चलन दो, अब बच्चा माना थे का कहूं हो थे तो ठीक है, अनादिकाल से संसार भोग रहे तो भोग, उसमें क्या। हाँ, फिर सीधी सीधी बात, अब अनादिकाल से चला आ रहा है और जो मिथ्या चला आ रहा है तो वो भी अब चलो आ रहा हो तो चलन दो, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं भैया, किसी ना किसी दिन तो घंटी बांधना पड़ेगी बिल्ली के गले में अगर चूहे को बचना हो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, हमें किसी ना किसी दिन तो इसका विचार करना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं हम, सुख के इंतजाम करते हैं या कि दुख का उपाय हम कर रहे हैं हम अपने हाथ से। और दूसरे को हम शिकायत करें कि मैं दुखी हूं, मैं दीनहीन हूं। अरे अपने अपने आप को हम संभाल लें तो अपनी दीनता हीनता और दुख अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। और फिर कहते हैं कि षट जीव निकाय की जिसमें हिंसा होती है उन कार्यों को बहुत अधिक मात्रा में करना, यह भी असाता के बंध का कारण है। बहुत आरंभ करना, यानी षट जीव निकाय की जिसमें हिंसा होती है। अकेले त्रस जीवों का घात करने वाला नहीं, एक इंद्री दो एक इंद्री जीव का भी, अग्नि जल वायु वनस्पति, इन सब की भी बहुत अधिक मात्रा में विराधना करना, यह भी अपने दुख को उत्पन्न करने का कारण है। सड़क बन रही है, हजारों पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है, जो कर रहा है करवा रहा है और बनी हुई सड़क की प्रशंसा कर रहा है, वे सब अपने असाता का इंतजाम कर रहे हैं। सहसा मालूम नहीं पड़ता हमने क्या किया, कुछ तो नहीं किया, हम तो बैठे थे आप, लेकिन आपने उस सब का
निष्क्रिय पाप है ये, निष्क्रिय पाप। एक तो सक्रिय हिंसा होती है, निष्क्रिय हिंसा होती, बैठे बैठे, क्योंकि त्याग तो किया नहीं। अगर आपने हिंसा का त्याग कर दिया हो तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन हिंसा का तो त्याग किया नहीं अभी। और उस सब में आप किसी न किसी रूप में शामिल हैं, ये सब हमारे असाता के कारण। और जितनी हमारे अंदर अपेक्षाएं हैं वे सब हमारे दुख का कारण बनती हैं, ये एक और बात। जितनी अपेक्षाएं दुख हम अपनी अपेक्षाओं से स्वयं अपने लिए उत्पन्न करते हैं। एक उदाहरण पढ़ रहा था सुबह सुबह अभी, बड़ा आश्चर्य लगा, हंसी भी आई। कुछ नहीं, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा सिनेमा हाउस शुरू किया, तो बहुत सुंदर बनाया था उसने, बढ़िया बढ़िया उसने सिनेमा ला करके लगाया था, तो बहुत भीड़ होने लगी। और बहुत भीड़ होने लगी तो उसको एक बोर्ड बनवाना पड़ा हाउसफुल, तो वो लगाया जाने लगा। वो हाउसफुल का जब बोर्ड लगाया जाता तो 150 आदमी फिर भी बाहर खड़े रहते। वो उन 150 लोगों को देख करके प्रसन्न होता था, वो जो भीतर बैठे हैं उनसे नहीं, वो जो हाउसफुल होने पर बाहर खड़े उनसे।
ये तो दो के बाद भी लगता है कि चार होती तो शायद मैं ज्यादा सुखी होता। अब उन दो में भी मुझे दुख लगने लगा, पहले एक में सुख मालूम पड़ता था, दो नहीं होने का दुख था, अब दो में भी सुख मालूम नहीं पड़ता, चार होने का, नहीं होने का दुख खाए जाए। ये रोज रोज अपने दुख का इंतजाम ऐसे हम स्वयं करते हैं। कभी विचार किया आप? कभी विचार ही नहीं करते अपन तो, आज बैठे हैं इसलिए विचार कर रहा हूं आपके साथ। वैसे तो ध्यान ही नहीं जाता, इतने जीवन निकलता चला जाता है अपना, पर आचार्य भगवंतों ने तो हम पर उपकार करके ये सब चीजें हमारे लिए लिखी भैया, हमें इन पर विचार करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालना चाहिए। और विचार करके जितना इंप्लीमेंटेशन हो सके, जितना जीवन में इनका हम प्रयोग कर सकें, आचरण में ला सकें, उतना करना चाहिए। और आखिरी बात आपसे कहूं कि दूसरे के दुख में दुखी न हो तो कोई हर्जा नहीं, पर दूसरे के दुख में कभी सुख मत मानना, ये अपने दुख का इंतजाम है। और ये मालूम कैसे होता है? जब दूसरा कोई अपना दुख सुनाने लगता है तो उसे सुनने से इनकार कर देते हैं अपन। नहीं, हम तो सुनते हैं महाराज, दूसरा कोई अपना दुख सुनाता है, कहां सुनते हैं। जैसे ही दूसरे ने कहा कि हमारा तो आज बहुत मूड में दर्द है, कह ले हम आओ सुई सुबेरे से पांव बहुत पिरा रहा, वाह वाह हो तो होशियार, ये क्या चीज है? सुनना नहीं चाहते आप, अपना दुख सुनाना चाहते। दुख सुनाना और दूसरे का दुख नहीं सुनना, अपने आगामी दुख का इंतजाम करते। दूसरे का सुख दुख सुनकर के सहानुभूति उत्पन्न होनी चाहिए थी, सहानुभूति तो उत्पन्न नहीं हुई, दूसरे का दुख सुनकर के अपना दुख और सुनाने का मन हो गया। और जितना हम अपना दुख सुनाते हैं उतना और अधिक दुख हमारा बढ़ता चला जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है भैया। एक छोटी सी घटना और सुनाऊं और बस। आज तो वैसे नहीं कहूंगा कि कितने बज गए, कोई ऐसा रोज हो जाए, ऐसा शरीर मिला होता कि महीनों महीनों में एकाध बार कभी आहार चर्या के लिए उठे तो ठीक है, वरना धर्म ध्यान में जीवन व्यतीत हो रहा। शरीर तो ऐसा मिला है, अन्न का कीड़ा है, रोज चाहिए इसके लिए। फिर भी अभी थोड़ा सा शेष है धर्म कि कुछ इस शरीर के माध्यम से भी अपन कर पाते हैं, इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो और अपने ही दुख का इंतजाम हम करते हैं। भैया इसका सदुपयोग करना भी अपने सुख का उपाय है, इसके माध्यम से इसको सुख पहुंचा करके भी हम दुख ही उत्पन्न करते हैं अपने लिए, ये ध्यान रखना। छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं, कैसे हम दूसरे के दुख में और सुख मान लेते हैं। होता क्या है अल्टीमेटली, वो रिएक्शन हमारे ऊपर होता है। रोज इस चीज को हम देखते हैं, बहुत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब जब भी अपन दूसरे के दुख में सुखी होते हैं तो देर सवेर वो दुख अपने ऊपर भी आ गिरता है, और फिर अपने दुख में कोई सहानुभूति दिखाने वाला भी नहीं मिलता, क्योंकि हमने तो किसी के दुख में कभी सहानुभूति व्यक्त ही नहीं की। एक व्यक्ति के बेटा था, उसका विवाह उन्होंने किया और लालच ने उनको इतना घेरा कि बेटी वालों को जितना हो सकता था पैसे के लिए उन्होंने तंग किया। इतना अधिक तंग किया कि देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगा, तो उनके मित्र ने ही उनसे कहा कि यार तुम तो इतने समझदार हो और इतना उनको परेशान कर रहे हो। तो जवाब क्या दिया इन्होंने कि नींबू तो निचोड़ने पर ही रस देता है, देखना, या कि गन्ने से रस तो निचोड़ने पर ही मिलता है। ऐसा जवाब देके आगे बढ़ गए। मित्र को अच्छा नहीं लगा कि मनुष्य होने के नाते कम से कम दूसरे को भी मनुष्य तो समझना चाहिए। और बात आई गई हो गई, दो तीन साल के बाद उन्हीं जनाब की बेटी ब्याह के लायक हुई, रिश्ता तय हो गया। अब ये बेटी वाले थे सो जिसके यहां पर ब्याह हुआ था उसने भी इनको इनसे एक कदम आगे बढ़कर के तंग किया। और जब रास्ते में उदास मिले तो पूछा कि क्या हुआ भाई इतने उदास हो, बेटी चली गई इसलिए? कहते नहीं भैया, जमाना बदल गया, बेटी वालों को तो लोग मनुष्य नहीं समझते, तो इनसे भी नहीं रहा गया। बोले पहले तो आप ही गन्ना और निब्बू कह रहे थे, अब वो आपको क्या मनुष्य समझेंगे, आपने उनको नहीं समझा मनुष्य। ये चीज हमारे तक हमारी ही लौट करके आती है, इस चीज को हम भूल जाते हैं। तो जब जब भी दूसरे के दुख का इंतजाम करने का मन होवे भैया, तो तैयार रहना कि अपने सुख के लिए, अपने दुख के लिए हम अपने हाथ से इंतजाम कर रहे हैं। और जब जब भी दूसरे का दुख दुख नहीं मालूम पड़े तो समझना कि अब हमारे जीवन में भी दुख आने वाला है। इसलिए अपने मोह को घटा करके, अपने पुरुषार्थ को जागृत करके, कर्म बंधन की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझ करके कर्मों से मुक्त होने का उपाय शीघ्र करना चाहिए। ऐसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्ध दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता
हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तलवर सा की झड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती बाणी मानो झरती हो फुल झड़ियां
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम साबानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते वो शम शम की अभिनश्वर मणियां
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पर
समा गए यह जो प्रक्रिया है वो बहुत स्थूल नहीं है बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आकर के हमारे हृदय में बैठ गए या कि हम जाकर के भगवान में समा गए ये बहुत स्थूल सा लगता है पर देखा जाए तो भगवान की जो वीतरागता है वो जिन क्षणों में हमारे भीतर आ जाती है तो समझो कि हम भगवान में समा गए या कि भगवान हमारे भीतर आ गए वीतरागता आ गई तो भगवान आ गए इसलिए उस भक्ति के समय कह रहे हैं कि ऐसा जान पड़ रहा है इतनी तल्लीनता हो गई भगवान की मुझे लगता है कि जैसे आप हैं सो ही मैं हूं जैसे कि बूंद समुद्र में गिरे तो बूंद का क्या अस्तित्व रहता है देखा जाए तो बूंद खो गई ऐसा मालूम पड़ता लेकिन विचार करें तो वो समुद्र हो गई बूंद अब वो समुद्र का ही एक हिस्सा हो गया ऐसे ही हम अपने बाह्य राग द्वेष मोह इत्यादि को जिन क्षणों में छोड़ देते हैं उन क्षणों में हम अपने स्वरूप में समा जाते हैं वो जो स्वरूप में समाना है वो ही तो भगवान में समाना है ऐसी एकाग्रता जो है भगवान की भक्ति के समय आ जावे थोड़ी देर को आती है आती तो होगी जब बहुत तल्लीनता हो जाती है तब ऐसा ही लगने लगता कि अरे यही तो मेरा भी स्वरूप था जैसा भगवान का है मैं कहां इस संसार के प्रपंच में पड़ करके और अपने हाथ से दुख उठा रहा हूं ऐसा मन में भाव आने लगता लेकिन फिर कह रहे कि मिथ्यै वेयम हालांकि भगवान आपसे काके में झूठी है जबात बिल्कुल अरे कौन हम आपके जैसे हो गए मगर लगने लगता है आपके दर्शन करने से ऐसा क्यों क्योंकि मुझे भी अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है तो मैं अपने उस वीतराग स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूं ये मेरे भीतर आत्मविश्वास जागृत होने से बड़ी तृप्ति मिथ्यैवेयम तदपि तनुते तृप्तिमभ्येष रूपाम लेकिन यह जो विचार मेरे भीतर आता है कि मैं भी आपके समान ही हूं मेरे भीतर भी वैसी ही शक्ति छिपी हुई है ये मात्र विचार भी मुझे बड़ी तृप्ति देता है पर बात झूठी है दोनों चीजें कह रहे हैं दृष्टिकोण देखिएगा शक्ति की अपेक्षा से निश्चय नय की कथनी क्या कहेगी कि मैं तो भगवान के जैसे ही स्वरूप को धारण करने वाला हूं लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो झूठी बात है अभी तो मैं भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त ही नहीं हुआ अभी तो मैं राग द्वेष और मोह से ग्रसित हूं एक मूर्ख व्यक्ति था गांव में तो सब उसको मूर्ख ही कहते थे अब उसको ये लगता था कि मैं तो मूर्ख हूं नहीं सब ऐसे ही कहते हैं मूर्ख एक दूसरे से सुन सुन के कहते हूं ये मूर्ख मैं थोड़ी मूर्ख हूं वो अपने होने मानता था मूर्ख तो उसने सोचा कि इस गांव में तो सबको आदत पड़ गई हमें मूर्ख के विकी हम तो दूसरे गांव में चले अब भैया ठीक है चले भैया दूसरे गांव की तरफ चले अब बीच रास्ता में और एक कुआ दिखा तो हाथ मुंह धो करके और थोड़ा विश्राम कर ले ऐसा सोच करके वो उसमें उस पर बैठ गया सो वो कुएं की जो पाट है उस पाट पे बैठा और पांव लटका लिए उसने भीतर की तरफ अब एक आदमी वहां से निकला तो वो तो दूसरे गांव का था वो वहां से निकला तो पानी पीने के लिए आया तो पहले नंबर पानी पीने से पहले कहता है कि कैसे मूर्ख हो तुम। तो वो जो व्यक्ति था वो कहने लगा तुमसे कौन कई कौन ने तुमसे जहां पहले तुम वो गांव से तो आए नहीं है जब जाके हमें तो तुम्हें क्या बताई कौन ने कि हम मूर्ख हैं। कहते भैया कोहने नहीं बताई तुम्हारे लक्षण बता रहे कि तुम मूर्ख हो पान अटकाए हुए हमारा व्यवहार तो ये बता रहा है कि अभी मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन
क्या बात है
बिल्ली जो है उसका घर बन गया वहां पर नीचे तो लेकिन मेरे व्यवहार से तो भले ही यह बात झूठी है पर अंतरंग में जब मैं झांक करके देखता हूं तो मैं भी आपके जैसे ही स्वरूप को धारण करने वाला हूं। दोनों ही बातें हैं।
क्या बात है।
तो इस तरह अगर अपन विचार करें तो जब हम भगवान की भक्ति करें तो क्या देखें हम अपने स्वरूप की तरफ देखें और अपने स्वरूप का स्मरण करने से हमारे मन में बड़ा संतोष मिलता है। जैसे अपनी भूली हुई चीज को मिल जाने पर हमें सुख होता है ऐसे ही भगवान की भक्ति करने पर हमें अपने भूले हुए स्वरूप का स्मरण हो जाने पर सुख होना चाहिए। लेकिन हमें इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि हम वैसे ही हो गए। हमें बाह्य में जो व्यवहार है उस व्यवहार की अपेक्षा से तो देखा जाए तो अभी मुझे अपने राग द्वेष मोह को जीतना है। भगवान तो अपने राग द्वेष मोह को जीत चुके हैं बस इतना जरूर है कि मुझे भी अपने राग द्वेष मोह को जीतना है। ये विचार भगवान के भक्ति से उनके स्मरण से मेरे भीतर उत्पन्न हो गया है। और फिर कहते कि तृप्तिम भ्रेश रूपाम सो ठीक है भगवान दोषात मानो बहुमत फलात स्व प्रसादात भवंती। आपकी प्रशंसा तो इसी बात में है कि कोई कितना भी पाप से लिप्त होवे कितना भी पतित होवे लेकिन आपके चरण सानिध्य में आकर के उसे पावन होने का अवसर मिल जाता है। उसको अपनी पावनता का स्मरण आ जाने पर वो अपनी मलिनताओं को हटाने लगता है और अपने आप ही पावन हो जाता है। आप थोड़ा उसे पावन करते हैं वो तो आपके चरण सानिध्य में अपने आप ही अपने पतित होने के कारणों को कोई छोड़ दे रहे तो पावन होने में देर कितनी लगनी है। एक तरफ मेरा स्वभाव अत्यंत निर्मल है ऐसा आप प्रेरणा देते हैं और दूसरी तरफ जो मेरा स्वभाव निर्मलता का है तो मैं क्यों जो है मलिनताओं को अंगीकार करता हूं। मैं छोड़ दूं मलिनताओं को तो मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर लूंगा। ये बात जो है आपकी भक्ति से ही मुझे अत्यंत स्पष्ट जान पड़ती है। अपन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो अपनी निर्मलता और अपनी मलिनताओं को दोनों को हम स्पष्ट रूप से देखें और जितना बने उतना हम बाहर संसार में आकर व्यवहार में आकर के भी अपनी निर्मलता को ही बढ़ाने के लिए उद्यम करें। क्योंकि संसार में तो जीव दुखी है किस बात से दुखी है अपने ही राग द्वेष और मोह से दुखी है और कोई उसका उसकी वजह नहीं कोई उसको दुखी करने वाला नहीं है संसार में। ये चीज हमें भगवान की भक्ति से स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि निर्मलता तो मेरा स्वभाव है फिर मैं जो दुख पा रहा हूं वो काहे से पा रहा हूं। मैं अपनी इस निर्मलता के स्वभाव को भूलने से दुख पा रहा हूं ऐसा उसके भीतर में विचार आवे। अपन लोगों के अंदर ये मलिनता कैसे आती है अपने ही विचारों से आती है। तो एक इसके लिए घटना मैं पढ़ रहा था वैसे क्या पता मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई अब आपको बताता हूं याद आ जाएगी शायद। एक व्यक्ति ने बहुत भगवान की पूजा भक्ति करी तो भगवान कहते कि देवता जो थे वो प्रसन्न हो गए उन्होंने कहा भैया वरदान मांगे। ऐसे जो देव होते हैं स्वर्ग के उनके अंदर शापानुग्रह शक्ति प्रभाव शाप देने की अनुग्रह करने की शक्ति होती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि पाप को उदय होवे तो वरदान में फल है और पुण्य को उदय होवे तो साप कछु बिगाड़े में ले जा भी ध्यान रखिए। हाँ नहीं तो जा सोचो कि कोई के करे से कछु हो जाएगा हमारे अपने पुण्य पाप से होता है।
लेकिन अब ठीक है, कथा में प्रसिद्ध है कि भाई उनने कहा वरदान मांगो, तो इसने सोचा कि भाई क्या मांगे, हमेशा को बार बार को झगड़ा काहे खोजे, कई बार मांग लो कि हम जो कछु मांगे सब मिल जाए, लियो। तो ऐसा वरदान मांग लिया। उनने कहा ठीक है जी, तो हम तुम्हें दे देंगे कि तुम जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दूना मिलेगा। उनके जो और मुश्किल भाई, अब बताओ आप, अपने को अपनी चीज मिल जावे इसका सुख नहीं है संसार में, जीव को इस बात का दुख है कि दूसरे को क्यों मिले। अब उसने सोचा कि देखें क्या होता है, तो उसने एक महल मांगा, तो देखा तो पड़ोसी के दो महल हो गए। उसने अपना माथा पीट लिया कि जो तो होगा हमने तो अच्छो कर देगा, अच्छा व्यक्ति हुआ कुछ नहीं उसका, उसको जो एक महल मांगा था तो मिल गया, लेकिन पड़ोसी के वे दो महल बन गए हमारे एक मांगे से। तो उसने वकीलों की सलाह ली। हाँ फिर अब क्या करें, ऐसे में तो जो है सलाह लेना पड़ेगी। तो वकीलों ने सलाह दी कि देखो ऐसा करो, तुम तो अब की बार मांगो कि एक कुआं हमारे घर के सामने खुद जाए। तो उसने कहा इससे क्या होगा, कहले मांगो तो मांग लिया उसने कि एक कुआं खुद जाए। तो देखा पड़ोसी के दो खुद गए, तो उसने कहा अब क्या करें, कहते तुम जी मांगो कि हमारी एक फूट जाए आंख। अब समझ में आ गया, अब उसमें प्रसन्नता है, ये जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, ये प्रवृत्ति हमारे ये तो मोटा उदाहरण है भैया, मनो करत अपन ऐसा ही है, ऐसो नहीं करत जैसो हमने कही है, मगर इसी रूप में करते किसी न किसी रूप में। दूसरे के अहित का जो विचार है वो मेरे हित में बाधक है, वही मेरी मलिनता का कारण है। ये विचार कभी नहीं आता। संसार में अगर देखा जाए तो जीव जो है यही अपने दुख का उपाय करता रहता, अपनी अज्ञानता से, अपने राग द्वेष और मोह की वजह से, इसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, कहते जरूर हैं लेकिन हमारे मन में यही विचार बने रहते हैं सुबह से शाम तक। और अगर ये आ जावे कि सब जीव अपने आत्मा का विकास करें, मैं भी अपने आत्मा का उत्थान करूं, ऐसा विचार निरंतर बना रहे तो भक्ति सार्थक हो जाए भैया। और क्या चीज है, अपनी भक्ति उतनी देर के लिए सार्थक हो पाती जितनी देर भगवान के चरणों में बैठते हैं, और अगर वहां से निकल कर भी ये विचार बना रहे कि नहीं मेरे द्वारा किसी जीव का अहित ना हो, सब जीव अपना हित करें, मैं भी अपना हित करूं, इस तरह से भक्ति हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है। आगे और वादिराज महाराज कह रहे कि मिथ्ये वेयम तदपि तनुते, नहीं मिथ्या वादम मलमपनुदन सप्त भंगी तरंगैर बागम बोधिर भुवन मखलम देव परियेति अस्ते तस्यावृत्तिम सपति विबुधाश्चेत सैवाचलेन व्याकनवंता सुचिरमृता सेव्या तृप्नुवंती। भगवान एक तरफ तो आपके दर्शन और दूसरी तरफ आपकी वाणी का श्रवण, दोनों चीजें हो रही हैं। समोशरण में अगर कोई बैठा होवे तो उसके लिए दोनों सौभाग्य प्राप्त होते हैं। अपन को इसमें से एक सौभाग्य प्राप्त है, अपन चाहे तो दूसरा भी प्राप्त कर सकते। हाँ भगवान के उस वीतराग स्वरूप से मिलने वाला संदेश भी ग्रहण कर सकते, अकेले दर्शन नहीं उससे मिलने वाला संदेश भी सुन सकते इन कानों के द्वारा। वहां समोशरण में बैठी हो तो एक तरफ वीतरागता दिख रही और भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, उसमें वचन उनके तत्व का प्ररूपण करने वाले वचन है, तो कह रहे कि वह जो वचन है वो तो समुद्र के समान है। तो वचन रूपी तो हो गया समुद्र और उसमें लहरें उठ रही, तो वो है स्यादवाद रूपी लहरें। और समुद्र की विशेषता है कि उसमें कितनी भी आप कचरा फेंक दो, कितनी भी मलिनता उसमें चली जावे, लेकिन समुद्र क्षण भर में अपनी लहरों के माध्यम से वो सारे कचरे को उठा करके बाहर किनारे पर फेंक देता है। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि आपके वचन रूपी समुद्र है, साधवाद रूपी लहरें हैं, वे जितने भी मिथ्या मान्यताएं रूपी कचरा है मलिनताएं हैं उसको हटाने वाली। लोगों के भीतर ये जो भ्रांति हो गई है कि तपस्या करने वाले ये जो तपस्वी हैं साधु जन हैं इनके तो देह इत्यादि अत्यंत मलिन होती है,
जैसा कि अभी सेठ कह के गए हैं, सो ऐसा जो मिथ्या फैल रहा है वाद, मिथ्या जो बातें फैल रही हैं वे सब आपके वचन के माध्यम से अपने आप शांत हो जाती हैं। ऐसा वादीराज महाराज भक्ति करते हुए विचार कर रहे हैं कि आपके वचन रूपी समुद्र है मानो, और उसमें साध्वाद रूपी लहरें उठने से ये जो भ्रांतियां हैं नाना प्रकार की हमारे मन में 363 विभिन्न मान्यताएं हैं जो संसार में भटकाने वाली हैं, वे सब हट जाती हैं। इतना ही नहीं, एक कथा प्रसिद्ध है संसार में कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया था देवताओं ने जब सुरासुर की लड़ाई भई थी। अब जब सुरासुर की लड़ाई भई थी कि नहीं भई थी, मनो अपने भीतर तो रोज चलते रहते, अच्छाई और बुराई की लड़ाई रोज चलती रहती है। अब देखो उस अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है उसके उससे जीतने के लिए क्या करें, तो उससे जीतने का उपाय कह रहे कि उस अगर वचन रूपी समुद्र का मंथन करे कोई, मंथन करे अर्थात अभ्यास करे, अब उसमें मथानी डाल करके सुमेरु पर्वत को मथानी बना लेवे और फिर उसको डाले, ये तो बहुत स्थूल सी बातें हैं। वास्तव में क्या कहना चाह रहे कि उस वचन रूपी समुद्र का कोई मंथन करे अर्थात उसका अभ्यास करे तो क्या प्राप्त होगा, उससे अमृत प्राप्त होगा अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। पीयूष है विषय शोक विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती। ये आचार्य महाराज की चार पंक्तियां हैं कि ज्ञान वास्तव में कैसा हो या भगवान की वाणी कैसी है, कहते पीयूष के समान है, अमृत के समान है, जिसके पीने से हम जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो जाते। तो भगवान के दर्शन कर रहे और उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे, उनने हमारे लिए जो वाणी कही है, जो वचन कर कह रहे हैं, उसका अभ्यास करें। उन आत्म तत्व इत्यादि जो सात तत्व कहे हैं, आत्म तत्व को आदि लेकर के उन सात प्रयोजनभूत तत्वों का उस समय पर हम विस्मरण कर रहे हैं कि हाँ वास्तव में मेरे आत्मा का स्वरूप तो ऐसा ही है जैसा भगवान का है, तो वह विचार भी हमारे लिए निर्मल बनाने में कारण बनता है। भगवान की वाणी के अनुसार अगर अपना जीवन बना ले में तो क्या क्या बात नहीं है भैया, भगवान के दर्शन करके उनके जैसे बनने की प्रेरणा लेवे और उनकी वाणी से और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम चाहें तो उनके जैसे बन सकते हैं। कितना आसान उपाय, एक तरफ दर्शन है समोचरण में, इसीलिए बहुत आसानी से जीव अपना कल्याण कर लेते कि एक तरफ तो स्वरूप दिखाई पड़ रहा, दूसरी तरफ उपदेश मिल रहा है कि करो तुम भी करो, तुम भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें आज इसीलिए अपन मंदिर को समोचरण जैसा मान के प्रवेश करते हैं कि हाँ वही साक्षात मानो वेदी पर भगवान बैठे हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, हम उनके गुणगान कर रहे हैं। पूजाएं भी हमने ऐसी बनाई जिनमें कि भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश अपन स्वयं बोलते हैं कि फिर मैंने दीपक को जो संसार में है उसी को ही रोशनी मान ली और अपने केवल ज्ञान रूपी दीपक को मुझे प्राप्त करना है। ये दीप तो बहुत थोड़ी देर में बुझ जाएगा, मैं तो प्राप्त करना चाहता हूं केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो कभी नहीं बुझेगी। ऐसी पूजाओं में अपन क्यों पढ़ते हैं, इसी दृष्टि से पढ़ते कि उपदेश भी साथ में मिल रहा और वितराग भगवान का दर्शन भी साथ में हो रहा, दोनों चीजें। और उपदेश तो इतना ही है भैया भगवान का कि अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र के हित का हमारे भीतर में विचार हो, इतना ही भगवान का उपदेश है। सब जीवों के कल्याण की जो भावना है वास्तव में वही सब धर्मों का उपदेश है। एक छोटी सी घटना सुना करके यहीं तक अपनी बात रखता हूं। क्या हुआ, एक बार छुट्टी का दिन था, अब बच्चों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो दो बच्चे थे उनकी अपनी अपनी साइकिल से वो चले जा रहे थे, उनने सोचा अपन दौड़ते हैं, साइकिल की दौड़ करते हैं, जो जीत जाएगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है भाई, अब दोनों ने अपनी तेजी से साइकिल चलाई, उतने में ही बहुत जोर से कोई बच्चों की मां ने आवाज दी कि अरे बच्चों देखो तो तुम लोग जरा जल्दी से साइकिल दौड़ा करके उसको बचा लो। क्या हुआ था कि छोटा सा बच्चा जैसे 2-3 साल के बच्चे को, वो जो बच्चों की गाड़ी नहीं होती जिसमें बिठा लेते हैं और फिर बाद में माँ या कि भाई कोई भी उसको पीछे से धक्का देके चलाते चले जाते हैं, तो वो एक और छोटा सा तो बच्चा और उसकी गाड़ी को चलाने वाला भी एक छोटा सा बच्चा। अब वो जब ढलान आई तो उससे गाड़ी नहीं संभली, उसके हाथ से गाड़ी छूट गई और गाड़ी तो उस बच्चे को लेकर के ढलान में और नीचे चली जा रही है। अब माँ चिल्ला रही है कि बच्चों देखो तुम अपनी साइकिल से और जाकर के उस बच्चे को चाहो तो बचा सकते हो। उसमें से एक ने क्या सोचा, अरे वाह हम हार जाएंगे, अगर हम इसको बचाने में लग जाएंगे तो हमें जहां तक पहुंचना है दौड़ में। भैया कहानी तो कहानी है, सबके समझ में आ गई हुई है, है? और दूसरे ने क्या सोचा, लेकिन अपन भी तो संसार के पांच इंद्री और मन के विषयों में दौड़ रहे और दूसरे को बचावे कि लाने कहूं कछू करत है, दूसरे के हित की लाने अपने हित की लाने करते कुछ कभी के नहीं कि उसी में लगे रहते गोरख धंधे में सुबह से शाम तक। जी है वह तो कहानी तो कहानी हूं मैं तो अच्छो लगे क्या हो बहुत अच्छो करो लड़का ने पीठ थपथपा दो होगी। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने फौरन जैसे ही आवाज सुनी और देखा कि हां सचमुच विपत्ति में है, एक तरफ छोड़ी अपनी प्रतियोगिता, एक तरफ छोड़ा अपना जीतना हारना और फौरन जाकर के जो है आगे निकल करके और उसको पकड़ लिया। उस जाती हुई खाली गाड़ी जिसमें बच्चा बैठा हुआ था, बताइए कौन जीता? कोई भी कह देगा कि भले ही वो दौड़ में नहीं जीता लेकिन प्राण बचा लिया तो जीत गए। भाई ऐसा ही तो उपदेश भगवान का है और इससे अतिरिक्त क्या है, हम अपने जीवन में भक्ति करते समय ये भावना भाए कि हमारे द्वारा सब जीवों का जो है उपकार हो, सब जीवों के उपकार में ही हम हैं, उसके हित में ही हम कारण बने, हम उसके अहित में कारण न बने। इतना ही तो उपदेश था भगवान का, वही उनकी वीतरागता को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है। जब तक अहिंसा और दया इत्यादि का जो उपदेश है वो हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम भगवान की भक्ति कितनी भी बाह्य में करते रहें वो भक्ति हमारे लिए उतनी लाभकारी नहीं होगी। भगवान की भक्ति तो उनके जैसे वीतराग बनने के लिए और अपने और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के लिए है। इसी भावना के साथ अपन भक्ति करके अपना कल्याण करें। बोले आचार्य विवर विद्यासागर
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जग जग